श्रीमद्भागवतम स्कंद आठ अध्याय 19 अध्याय का शीर्षक है बलि महाराज से वामन देव द्वारा दान की याचना और श्लोक संख्या 40। सद्यथा वृक्ष उल्लोला शिष्यति उद्वर्तते शिरा नष्टानृप सद्या आत्मा शिष्येण संशयः। तद्यथा वृक्ष उन्मूलः शिष्यति उद्वर्तते शिरः एवं नष्टानृता सद्यः आत्मा शिष्येण संशयः। तद्यथा वृक्ष उन्मूलः शिष्यति उद्वर्तते शिराः एवं नष्टानृता सद्यः आत्मा शिष्येण संशयः। तद्यथा वृक्ष उन्मूलः शिष्यति आत्मा शिष्येण संशयः शिष्यतेष्टा सद्या आत्मा शिष्येण संशयः। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की शब्दार्थ एवं अनुवाद यदि से भी सुन रहे अतएव यथा जिस प्रकार वृक्ष वृक्ष उन्मूलः जड़ समेत उखाड़ने पर शिष्य भी सूख जाता है उद्वर्तते गिर पड़ता है अचिरात शीघ्र ही एवं उसी तरह नष्ट नष्ट हुआ अनृतः यह नाशवान शरीर सद्यः परंतु आत्मा शरीर शिष्येत सूख जाता है नहीं संशयः कोई संदेह। अनुवाद पहले ध्यान से सुनेगा उसके बाद मेरे को शुद्ध करेगा। जड़ समेत उखाड़ने पर वृक्ष तुरंत गिर जाता है और सूखने लगता है। इसी प्रकार यदि कोई इस शरीर की परवाह नहीं करता जो असत्य माना जाता है, अर्थात यदि इस असत्य का उन्मूलन कर दिया जाए तो यह शरीर निश्चय ही सूख जाता है। जड़ समेत उखाड़ने पर वृक्ष तुरंत गिर जाता है और सूखने लगता है। इसी प्रकार यदि कोई इस शरीर की परवाह नहीं करता जो असत्य माना जाता है, अर्थात यदि इस असत्य का उन्मूलन कर दिया जाए तो यह शरीर निश्चय ही सूख जाता है। इस प्रसंग में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षु परित्यागौ वैराग्यं फलदु कथ्यते। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.266। जो व्यक्ति वस्तुओं का कृष्ण से संबंध जाने बिना उन्हें बहिष्कृत कर देता है उसका वैराग्य अधूरा होता है। यदि शरीर कृष्ण की सेवा में निरत हो तो शरीर को भौतिक नहीं मानना चाहिए। कभी कभी गुरु के आध्यात्मिक शरीर के विषय में भ्रम हो जाता है। इंग्लिश में प्रभुपाद कह रहे हैं कि समटाइम्स गुरु के शरीर को भौतिक मानते हैं। स्वेटन बड़ी बेटन मिसअंडरस्टूड, किंतु श्री रूप गोस्वामी उपदेश देते हैं हरि संबंधी वस्तुनः, कृष्ण की सेवा में पूर्णतया निरत शरीर की उपेक्षा भौतिक समझकर नहीं करनी चाहिए। जो उपेक्षा करता है उसका वैराग्य झूठा है। यदि शरीर का ठीक से भरण पोषण नहीं होता तो यह जड़ से उखाड़े वृक्ष की भांति गिर कर सूख जाता है, जिससे आगे फल फूल नहीं लिए जा सकते। अतः वेदों का आदेश है, इस प्रकार श्लोक आता है। तात्पर्य यह है कि जो कार्य परम सत्य ओम तत्सत की तुष्टि के लिए शरीर की सहायता से किए जाते हैं वे कभी नाशवान नहीं होते। भले ही वे नाशवान शरीर द्वारा स्वपन्न किए जाए, निसंदेह ऐसे कार्य शाश्वत होते हैं। अतएव शरीर की ठीक से देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि यह शरीर शाश्वत नहीं है, नाशवान है। तो भी कोई ऐसे शेर द्वारा खाया जाने नहीं दे सकता है, ना किसी शत्रु के द्वारा वध होने दिया जा सकता है। शरीर की रक्षा के लिए सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो बहुत संक्षिप्त तात्पर्य श्री प्रभुपाद का और वेल इंस्ट्रक्टेड। അമഗാന്തിമിരം ദുസ്വാജാനഞ്ജനാശലാഖയ ചക്ഷൂരന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യ മനോവിഷം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപാഗതാമയ്യം ദദാതി സ്വാഗതാന്തിനം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീതാവതകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാശാം ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഹഗണലലിതാശേഷാഖാൻവിതാം ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതെ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരീ വിഷഭാനോ സുദേവീ പ്രണമാമേ ഹരിഭ്യേ. വാഞ്ഛാഗണപതിരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുവേവ ച അഭിദാനാം ഭാവേവോ വൈഷ്ണവേവോ നമോ നമഃ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശിവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപുഷ്ടായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമീ നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി വിചാരിണെ. നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പശ്ചാത്ത ദേശകാരിണെ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ആശീർവാദ ശിവനെ കശുപുരി വാരണ ബലി മഹാരാജ
प्रसन्न होके बलि महाराज कहते तुमको क्या चाहिए आप बताओ, मेरे पास बहुत सारा पूरा राज्य मेरे पास है, तुम बताओ। हम जानते हैं कि वामन देव क्या मानते हैं, तीन पर मेरे को एक इंस्टेंस याद आता है कि एक बार हम भी कहीं के किसी से ऐसे दान मांगने गए थे, तो बहुत ही बड़ा नाटा होती था एकदम, और उसके सामने बैठे हम थोड़ा बातचीत शुरू किया, तो बहुत समय तक पहले तो शुरू में अच्छे से बात कर रहे थे, फिर उनका एक क्लाइंट आ गया उनके सामने, क्लाइंट आया तो उनसे बात करने लगा, उनसे उनका तो मुझे आप वेट कीजिए, ठीक है सामने बैठे हैं वेट कर रहे हैं। पंद्रह मिनट निकल गए, आधा घंटा निकल गया, एक घंटा निकल गया, दो घंटे निकल गए, वहां पर बैठे बैठे सुमन में तो आ रहा था कि चले जाए कुछ जो है मतलब बाद में टाइम दे लिए, बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोगों से टाइम मिलना भी और ऐसे समय मिलना भी, परंतु और जैसे उनका ये कन्वर्सेशन ओवर हुआ अपने क्लाइंट के साथ में, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं कुछ बोलूं कि कोई साधु व्यक्ति आया तो आपको कैसे उनको बात करना चाहिए, कैसे ट्रीट करना चाहिए, तो हम स्पॉन्टेनियसली मेरे मुंह से उनके लिए तारीफ मिली कि आप इतना अच्छे से डील करते हैं लोगों के साथ में, तो बहुत अच्छा सीखने को मिला, तो उनको मैंने बहुत ऐसे उनको बोला चढ़ाया कि आप कितने अच्छे हैं, आप कितना ग्लोरियस आपका बिजनेस, कितने अच्छे से आप व्यवहार करते हैं, वो इतने गुणगल क्या चाहिए। तो यहाँ पर वामन देव भी बहुत ग्लोरीफाई कर रहे हैं, देखिए बलि महाराज को बहुत ग्लोरीफाई कर रहे हैं, वो बलि महाराज कह रहे हैं क्या चाहिए, अतीन पर भूमि मांगते थे कहते कि ये अतीन पर भूमि क्या करोगे, मतलब पूरा एक प्लेनेट दे सकता हूँ, आई कैन गिव यू दैट, मेरा नहीं, जिसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है उसको पूरा संसार ही मिल जाएगी, तो उसकी काम वासना पूरी नहीं होगी, इस प्रकार उपदेश देते हैं वामन देव बलि महाराज को। अब शुक्राचार्य तो वही सामने बैठे हैं, गुरु है तो राज्यसभा में गुरु साहब में बैठे हैं, तो शुक्राचार्य कहते हैं नहीं भैया क्या करो, ये स्वयं भगवान है तुमसे छल कर रहे हैं, छल रहती विक्रमण छल कर रहे हैं तुम्हारे साथ में, ये भगवान स्वयं तुमसे लेने के लिए आए हैं, नाउ आई स्पीकिंग, अब जो है वो बोलना कि कुछ श्लोकों से पहले अब बोलना शुरू कर रहे हैं, तो इस श्लोक में जैसे आता है तद्यथा वृक्षोन्मूल शिष्यति उद्वृत्ते सुरात एवं नष्टानृत सभ्य आत्मा शिष्येन संशय। तो यहां पर दूसरा विषय आज हर चर्चा करने का है कि किस प्रकार एक गुरु की क्या योग्यता है, और जैसे हम देख रहे हैं यहां पे वो कह रहे हैं कि जड़ समेत उखाड़ने पर वृक्ष तुरंत गिर जाता है और सूखने लगता है, इसी प्रकार यदि कोई शरीर की परवाह नहीं करता जो सत्य माना जाता है, अर्थात यदि इस असत्य का उन्मूलन कर दिया जाए तो यह शरीर निश्चय सूख जाता है, उसी प्रकार के आजकल के मॉडर्न कंटेक्स्ट में देखें तो ऐसे गुरु बहुत हैं, जो कुछ उदाहरणों के साथ में आपको बताएंगे कि हाँ कैसे आपको शरीर को मेंटेन करना और कैसे उनके शरीर को मेंटेन करना है। तो यहां पर उदाहरण भी इसी प्रकार से उन्हें यूज कर रहे हैं ताकि उनकी इंद्रिय तृप्ति में कोई बाधा ना आए। अगर बलि महाराज सब कुछ दे देंगे तो उनके पास क्या बचेगा? सबको दे दिया तो क्या बचेगा उनके पास? जिस व्यक्ति के अंदर स्वार्थ की इच्छा है तो वो कैसे गुरु हो सकता है? अपना स्वार्थ सोच रहा है ना, तो स्वार्थ गतिम की विष्णु गुरु अर्थ मान। जिसका स्वार्थ अपने इस इंद्रिय तृप्ति के लिए है, अपने इंद्रिय को तुष्ट करने के लिए है, तो कैसे वो गुरु हो सकता है? इसी सिमिलर कंटेक्स्ट में हम देखें तो वन वेरी प्रोमिनेंट करेक्टर इन रामायण के अंदर बहुत विशेष प्रसंग आता है। अभी पीछे राम नवमी की रही है, लेट द कंटेक्स्ट ऑफ मंत्रा एंड कैकेयी। सो मंत्रा जो है वो गुरु का कार्य कर रही है और कई कई शिष्य कार्य कर रहे हैं। इनिशियली शुरुआत में कई कई बहुत खुश थी किस प्रकार एक राम को राज्य अधिकार दिया जा रहा है। शी वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश थी और उस खुशी में तो मैं जितना भी जोहरात इत्यादि आभूषण सब कुछ देना चाह रही थी। तो जब उन्होंने मंत्रा को बुलाया और मंत्रा को कुछ आभूषण दिए तो मंत्रा ने इमीडिएटली उसको उखाड़ के उसको फेंक दिया। तो दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड अ वायलेंट रिस्पॉन्स, मतलब कि गुस्से का रिस्पॉन्स है। तो जब फेंक दिया चाहिए नहीं, क्या हो गया? ये तो खुशी का विषय है, ये खुशी का विषय है। मंत्रा कहते तुम्हारा सब कुछ जाने वाला है, तुम मूर्ख बन रही हो। उसके पीछे क्या कारण था? ऐसे एडवाइस देना क्योंकि उनकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आने लगी थी। अब मंत्रा के इंद्रिय तृप्ति में बाधा आने लगी थी तभी वैसे एडवाइस कर रहे हैं। तो क्वालिफिकेशन और गुरु एज यू नो, गुरु की योग्यता वाच वेद मनसा क्रोध देह जीवा देह मदर उपस्थित कान वेदान विषय पदे। ये सब इंद्रियों पे मन पे उसका वश होगा तभी वो गुरु बनने का अधिकार। जैसे युद्ध गोस्वामी फर्स्ट वर्स ये बताते हैं। वन टाइम श्री प्रभुपाद से एक बार ये पूछा गया, प्रभुपाद आप देखते हैं कि हम लोग गुरु गुरु में से दक्ष, गुरु को दक्ष माना जाता है। जैसे यहाँ पे भी देश में परपट के अंदर आता क्या है, श्लोक के अंदर क्या आ रहा है, परपट में आता है कि कभी कभी एक गुरु के आध्यात्मिक शरीर के विषय में भ्रम हो जाता है। उसने प्रभुपाद से पूछा गया, प्रभुपाद कभी आप कुछ भूल जाते हैं, कभी कुछ गलतियां करते हैं, तो हम कैसे समझे आप दक्ष हैं? मैं गुरु में से दक्ष। प्रभुपाद गिव्स द रिप्लाई वेरी फॉर्मली, तो बोले बहुत अच्छा एक रिप्लाई देते हैं। उनको कहते हैं गुरु दक्ष है किस संदर्भ में? इन प्रेजेंटिंग कृष्ण ऑलवेज, कृष्ण को प्रस्तुत करने में कभी वो गलती नहीं करते। इन दिस रिस्पेक्ट द गुरु इज दक्ष। तो ये हमको सिखाता है कि कैसे हम गुरु को चॉइस करें और श्री प्रभुपाद जी का जीवंत उदाहरण है कि श्री प्रभुपाद जी ने वंश मात्र भी अपनी अनुसुख की इच्छा को इच्छा नहीं दी। प्रभु सेठ जब मैं यहां से गया था प्रभु शालित लोग करोड़ ऑफ रुपीज नथिंग बिलोंग्स टू मी, कुछ ही मेरा नहीं है, सब कुछ कृष्ण की संपत्ति है। सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द आइडियल डिवोटी। ये एक आदर्श उदाहरण है एक आदर्श भक्त का। नाउ रिलेटेड टू द वर्स, अब हम श्लोक पे आए और तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सारी चीजें यहां पर इंगित कर रहे हैं। जो व्यक्ति वस्तुओं का कृष्ण से संबंध जाने बिना उन्हें बहिष्कृत कर देता है उसका वैराग्य अधूरा है। ये तो एक शुष्क वैराग्य यानी कि उसकी बड़ी भाषा दे रहे हैं। जो असली युक्त वैराग्य है उसकी बड़ी भाषा श्री रूप गोस्वामी देते हैं। अनासक्त विषयान यथारम उपयुंजित निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य से उच्चते। अनासक्त विषयान, अनासक्त करना होगा पहले विषयों को। नाउ व्हाट इज द रियल रिनाउंसिएशन यदि रूप गोस्वामी हमको बताते हैं, क्योंकि तीन प्रकार के लोग हैं। एक है ज्ञानी, एक है कर्मी और एक है भक्त और योगी जन भी, योगी भी ज्ञान नहीं चाहते उसमें आते हैं। तो प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर बताते हैं केवल्यम नरकायते दास गुर आकाश पुष्पायते सिद्धांत इंद्रिय काल सर्व बदली प्रमुखाष्टदंतरायते केवल्यम नरकायते। जो ज्ञानी जन है जो ब्रह्म में अपना ध्यान लगाते हैं तो बोलाना सरस्वती कहते हैं कि नरक नरक तुल्य है, क्योंकि उसको आना ही पड़ेगा। आरक्षण कृष्ण पतंती अदह, उसको नीचे आना ही होगा। ज्ञान जन केवल्यम नरकाया थे त्रिदास गुर आकाश पुष्प त्रिदास गुण 33 करोड़ देवी देवताओं जैसा ऐश्वर्य को पाने के लिए त्रिदास गुर आकाश पुष्पाया थे, क्योंकि परम सुख मिल जाएगा। कर्मी लोग ये सोचते हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो पूरा जीवन उसका पापमय हो मगर लाश हो गया स्वर्ग चले गए, स्वर्गवास हो गया। अगर चले भी गए आकाश पुष्पाया थे, प्रभुपाद कहते हैं कि अ फ्लावर डज नॉट ग्रो इन द स्काई, एक फूल कभी आकाश में उगता नहीं है, वो जमीन पे ही उगता है। इट इज समथिंग लाइक फेंटस मंगोलिया, इट्स इमेजिनेशन कि वो सुख मिल जाएगा। इट इज आकाश पुष्प आया थे, आकाश में पुष्प खेल रहे, ऐसा देखा है आप लोगों ने दिन कहीं उग रहा है सब आकाश पुष्प आया थे। देन आगे कहते हैं प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर वेदांत इंद्रिय काल सर्प बटली तो खास बंतराय थे वेदांत इंद्रिय। ये इंद्रिया किसके समान है? ये सर्प के समान है। वेदांत इंद्रिय काल सर्प बटली तो खास बंतराय थे, मगर उसके बाद अगर निकाल दिया जाए बात जाते हैं फिश। हाँ, अगर वो करता भी रहे तब भी लोगों से डरेगा नहीं अगर उसके दांत निकाल दिए गए हो। अ चाइल्ड में फियर, एक बच्चा डर सकता है मगर जिसको पता है कि ये उसके दांत निकले हुए हैं वो डरेगा नहीं। धन शिल से दांत निकालने का मतलब है इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, तभी इसका विष खत्म होगा, तभी ये इंद्रियां शुद्ध हो पाएंगे। वेरी प्रोमिनेंट एग्जाम्पल। इसीलिए श्रील प्रभुपाद चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 28 भगवद गीता 9 अध्याय 28 श्लोक में इस वैराग्य के बारे में भगवान व्याख्या कर रहे। पहली ही लाइन में श्रील प्रभुपाद कहते हैं वन हु एक्ट्स इन कृष्ण कॉन्शियसनेस अंडर द सुपीरियर गाइडेंस सुपीरियर डायरेक्शन इज कॉल्ड युक्त वैराग्य। वेरी क्वेश्चन, पहली लाइन में प्रभुपाद बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं कि युक्त वैराग्य का मतलब क्या है। वन हु एक्ट्स, एक व्यक्ति जो कार्य करता है कृष्ण भावनामृत में अंडर सुपीरियर डायरेक्शन, किसी वरिष्ठ व्यक्ति के डायरेक्शन में, इट्स कॉल्ड युक्त वैराग्य। यानी कि पुराने श्री बाबा जी कहते हैं कार्य कोई भी नहीं रोक सकता। जैसे यहां पर एक तर्क दे रहे हैं, ये शुक्राचार्य तर्क दे रहे हैं, अगर वृक्ष को जड़ से निकाल देगा उसके फल सूख जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मगर उस फल का क्या करेंगे वो नहीं बताया आगे, फल खुद खाएंगे क्योंकि फल वो मिल नहीं रहे। तो इसलिए शुक्राचार्य कह रहे हैं कि नहीं, अब मेरे को फल तो चाहिए उसके, मगर वो फल किसके लिए है, वो कृष्ण के लिए है। दैट इज अल्टीमेट कंक्लूजन, दैट इज कॉल्ड वैराग्य। ये वैराग्य शिक्षा चैतन्य महाप्रभु स्वयं सिखाने आए, सारो मद्दाचार्य दादे हैं। वैराग्य शिक्षा नज भक्ति योगा शिक्षा रतम एक दोषा पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारे कृपा मुदया समथिंग लाइक दम। तो कह रहे हैं कि वैराग्य विद्या श्री चैतन्य महाप्रभु सिखाने आए हैं। निराकारवादी का तथ्य है कि इसको अस्वीकार, इसको इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, मगर भक्तों का क्या है, भक्तों का कृष्ण से जोड़ दो। जस्ट लाइक श्री रूप गोस्वामी कहते हैं अनासक्त से विषयान, अनासक्त करना होगा पहले, जैसे ये करताल है एक उदाहरण, ये कोई चीज समझ लीजिए और ये है हमारा मन या शरीर, अगर हम जो है इसको मिला देते हैं डेट इज कॉल्ड आसक्ति। अगर हमने अनासक्त कर दिया, इसको अनासक्त कर दिया, मैं कहीं ना कहीं तो जोड़ना पड़ेगा अपने मन को, कहीं ना कहीं तो लगाना होगा, तो डेट इज टू कृष्णा, कृष्ण के ऊपर लगाना होगा, तभी ये संतुष्ट रह सकता है, तभी ये आनंद में रह सकता है, तभी ये दैट इज व्हाट गोपाल आनंद सरस्वती से। इसके दांत जब तक नहीं निकालेंगे जब तक कॉन्शियस नहीं रहेंगे तब तक ये मन हमको हमेशा परेशान करेगा, हमेशा ट्रबलसम रहेगा। और यही उद्देश्य है इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का, किस प्रकार हम अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी वाणी को भगवान की सेवा में लगा सके। एंड आइडियल एग्जांपल, आदर्श उदाहरण है, वो है अमरीश महाराज का। अमरीश महाराज का एक आदर्श उदाहरण है, जिन्होंने अपने हर एक अंग से भगवान की सेवा की और ये नवविदा भक्ति की आदर्श उदाहरण उनमें से एक आते हैं अमरीश महाराज। सवै मना कृष्ण पदार वंदे भाषांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करोर हरेर मर्दिन मा जनाधिशु श्रुतिं चकार चित्त सत्कत्थो दे मुकुंद लिंगाय दर्शने दिशो तद्भृत्य भ्रातृ स्पर्शे संग संगुण तत्पाद सरोज सुर सौरभे श्रीमद तुलसया रस नाम प्रवर्तिते पादौ हरेर क्षेत्र पदानु सर्पणे शिरोर शिर्गेश पदा दिवंदने कामं सदास्य नाप काम कामलेया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति। अमरीश महाराज, महाराज अमरीश सदैव अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों को, कमलों का ध्यान करने में, अपने शब्दों को भगवान का गुणगान करने में, अपने हाथों को भगवान के मंदिर झाड़ने दुहारने में, अपने कानों को कृष्ण द्वारा या कृष्ण के विषय में कहे गए शब्दों को सुनने में लगाते रहे, वे अपनी आंखों को कृष्ण के अर्च विग्रह, कृष्ण के मंदिर तथा कृष्ण के स्थानों तथा यथा मथुरा तथा वृंदावन को देखने में लगाते रहे, वे अपने स्पर्श इंद्रिय को भगवत भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने में, अपनी भान इंद्रिय को भगवान पर चढ़ाई वे तुलसी यानी सूंघने, तुलसी की सुगंध को सूंघने में और अपने जीव को भगवान का प्रसाद चखने में लगाते रहे। उन्होंने अपने पैरों को पवित्र स्थानों तथा भगवत मंदिरों तक जाने में, अपने सिर को भगवान के समक्ष झुकाने में और अपनी इच्छाओं को 24 घंटे भगवान की सेवा करने में लगाया। निसंदेह अमरीश महाराज ने अपने इंद्र तृप्ति के लिए कभी कुछ भी नहीं चाहा। वे अपनी सारी इंद्रियों को भगवान से संबंधित भक्ति के कार्यों में लगाते रहे, भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने और समस्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त होने की यही विधि है। भगवान से अपनी आसक्ति बढ़ाने के लिए हमने सारे इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना है। तो यही श्री रूप गोस्वामी, अनेक आचार्य सभी यही इंगित करते हैं। हम श्री रूप गोस्वामी कहते हैं 64 अंगों के बारे में बताते हैं, भक्ति के 64 अंग, दैट इज द प्रिंसिपल्स, जो सिद्धांत है वो। और यदि हम इस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं, दैट इज कॉल्ड युक्त वैराग्य, वे है सही वैराग्य। और श्री प्रभुपाद ने हमें सिखाया है कि जिस प्रकार हम भक्तों के सन्निध्य में रहते हुए व्यक्ति वही कर सकता है जो कि किसी के सान्निध्य में है। जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वन एक्ट्स इन कृष्ण कॉन्शियसनेस अंडर सुपीरियर डायरेक्शन, किसी सुपीरियर के डायरेक्शन में है तभी वो चीजों को सही रूप से लगा सकता है। सुपीरियर डायरेक्शन बहुत जरूरी है, खासकर आजकल की एज में, इट्स कॉल्ड द टेक एज, जहां पर टेक्नोलॉजी को ज्यादा जोर दिया जाता है। नेसेसरी, मगर उसको कैसे लगाना है बंदर के हाथ में, अगर अगर आप छुरी दे देंगे तो क्या होगा, या तो दूसरे को मारेगा या खुद को मारेगा, और उसको ट्रेन कर देंगे तो हाथ में हो सकता है वो ठीक से यूज कर ले। उसी प्रकार से आजकल के टेक एज के अंदर जहां पर यूट्यूब, फेसबुक इत्यादि, व्हाट्सएप, ये बहुत जरूरी ही है प्रचार के लिए, परंतु सावधान, रंगो मई सावधान मते, सावधानी से इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसा देखा जाता है धैतो विश्यान पुंसा संघर्ष से उपजाते, जब ध्यान जाता है एकदम, जैसे यूट्यूब खुलता है, जैसे फेसबुक खुलता है, वैसे इसके ऊपर एकदम ध्यान जाता है, धैतो विश्यान पुंसा, और आकर्षित हो जाता है, और वही चीज से मैनिफेस्ट होती है, अगर बार बार उसी में बार बार ध्यान जाता रहेगा तो वही आकर्षित करेगा। परंतु अगर सुपीरियर डायरेक्शन है, अगर वरिष्ठ दर्शनजनों की कृपा है हमारे ऊपर और हम किसी संरक्षण में है, तो निश्चित रूप से हम हमेशा बचे रहेंगे और भगवान की सेवा में हमेशा व्यस्त रहेंगे। हरे कृष्ण कंसाश्रम भागवतम की शील प्रावधान की समझ छोटी हो गई है तुम, हाँ, परंतु कोई कमेंट्स या फिर कुछ क्वेश्चन अगर आप हो तो सुन लें।
उसके समान जैसे सर्प के दांत निकाल लेना, लेकिन इंद्रियां मान लीजिए सेवा में लगी हैं, लेकिन मन कहीं और है, तो क्या उसको युक्त वैराग्य बोलेंगे? और दूसरा प्रश्न है कि फिर ऐसे मन को इंद्रियां लगी हुई हैं, तो मन को भी कैसे साथ में लगा सकते हैं?
अच्छा प्रश्न है आपका। तो ये वाला प्रश्न है कि अगर इंद्रियां लगी हैं, मन नहीं लगा हुआ, इसलिए अमरीश महाराज कहते हैं, सबसे पहले क्या कह रहे हैं, मनः कृष्ण बदार बंगो वाचान से वैकुंठ गुमान। तो निश्चित रूप से जब हम माला भी करते हैं, भगवान का नाम जब करते हैं, तो हमारा मन कई बार बहुत परेशान करता है, इधर उधर घूमता है, बट बार बार इसको खींच के लाना है। मन कैसा है, एक मक्खी के समान, मक्खी क्या है, मक्खी हमेशा गंदे चीज में बैठेगी, तो बार बार इसको अभ्यास से न पकड़ने का, अभ्यास करना है उसको बार बार खींचने का, लगाने का। सो दैट इज द आंसर टू सेकंड क्वेश्चन आंसर, कि जब मन और इंद्रियों को तो लगाना सबसे पहले जरूरी है, पर साथ साथ मन को भी प्रैक्टिस कराना है कि वो भगवान की सेवा में लग जाए। कोई तभी लग पाएगा मन, मन की दोस्त क्या है, श्रवण करना, जहां से जितना हो सके श्रवण, भागवत श्रवण है, कीर्तन है, साथ में कीर्तन है, कुछ ना कुछ सेवा करते हुए भी कीर्तन सुने, भगवान का नाम बोलते रहे मुख से। आप देखेंगे तो श्रवण कीर्तन के माध्यम से श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण धन विष्णु स्मरण अपने आप होगा, मन तभी लगेगा जब हमें श्रवण कीर्तन और अनेक विधियों से भगवान की सेवा, शरीर लगा हुआ है मन को लगाने के लिए श्रवण और कीर्तन को जोड़ दीजिए। हरे कृष्ण भगवत हनुमान सबका मंत्राश्रम भागवत शिल्पा की गौरव।